اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای میل اسپیشل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو آپ نے سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ اور ہمارے یہاں پر حزب سابق موجود ہیں، یہاں پر عالی جناب مولانا علی عدیم شیرالی صاحب، جو آپ کے بھیجے ہوئے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے وقت کے دامن وقت میں گنجائش رہے گی انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آئیے اپنے سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں علی جناب مولانا کی خدمت میں، اور ان سے ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج دینے ہیں جو ناظرین کی توقع ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال لکھنؤ سے ہے، وجیہ خاتون کا، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں روزے بھی رکھتی ہوں، کیا ماہ رمضان میں ہر رات افطاری و مفصل مہمانداری کروں؟ کیا میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ اور یہی بات جب میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تم کاہل ہو، سست ہو، مجھے افطاری کے ثواب سے محروم رکھنا چاہتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک آدھ کھانے پر راضی نہیں ہونا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر مفصل اور مختلف غذائیں ہونی چاہیے۔ کیا واقعاً اس کام سے ان کو ثواب ملے گا؟ کیا خدا راضی ہوگا کہ وہ مجھے مجبور کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صرف اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں ہی کو دعوت پر بلاتے ہیں، آپ ان کی نصیحت اور اصلاح فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جیسا کہ لکھنؤ سے یہ ای میل ہے وجیہ خاتون کا غالباً، انہوں نے جو بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے 5 بچے ہیں، اور رمضان میں ویسے ہی سخت ہوتا ہے روزہ رکھ کر کسی بھی کام کو انجام دینا، اور ایسی صورتحال میں کہ بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوں تو اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ 2 سے زیادہ ہے، 3 4 5 بچے، تو یہ واقعی ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ ہر روز دعوتیں کریں اور طرح طرح کے کھانے بنائیں۔ تو ان کے شوہر جو ثواب کمانا چاہ رہے ہیں، تو در حقیقت وہ ثواب نہیں کمائیں گے بلکہ وہ گناہ کمائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زوجہ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کسی ثواب کمانے کے لیے سامنے والی کی رضایت بھی ضروری ہے کہ وہ بھی راضی ہو اور اس میں شامل ہو آپ کے ساتھ۔ لیکن جب وہ اپنی توانائی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر توانائی نہیں موجود ہے، تو خدا بھی بندے پر اس کی توان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔
جیسا کہ ان کے سوال سے خود واضح ہے کہ وہ راضی نہیں ہے،
راضی نہیں ہے، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود کھانا پکانے کا عمل ایک اخلاقی عمل ہے۔ اگر بیوی اخلاقی طور سے میاں سے خوش ہے، اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ بنا لیتی ہے، اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بنائے۔ تو اس صورت حال میں کہ وہ اپنی بیوی کو پریشر میں لے لیں اور یہ کہیں کہ ثواب کمانا ہے، تو ایسا ثواب خدا کو بھی نہیں پسند ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کا ان کے بیوی پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور اس کا اثر پھر رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی ہوگا، کیونکہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا خیال نہیں رکھے گا، اس کی توانائی اور اس کی خوشی کو مد نظر نہیں رکھے گا، تو وہ لائف ڈسٹرب ہوگی۔ اچھا، دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ ان کے اپنے ہی دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو بیلنس کرنا چاہیے، اور دین خود تعادل کا نام ہے، جو افراط اور تفریط نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والوں کو بھی بلایا جائے، ان کی سہیلیوں کو بھی بلایا جائے، تاکہ گھر بیلنس ہو، اور اگر افطاری سادگی سے ہو تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ اس کے اندر لوگ جو تکلیف کم ہوگی اور زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے،
یعنی اگر ان کے بھی خاندان والے آئیں گے تو اتنی تھکاوٹ نہیں،
تو اتنی تھکاوٹ کم ہوگی۔ لیکن اس بات کا جو انہوں نے اظہار کیا، اس میں قطعاً ان کی بات بالکل صحیح ہے، اور ان کے شوہر سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دین کی روشنی میں، آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں، ایسا عمل خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، مستحب عمل کہ جو کسی کو تکلیف میں ڈال دے، تو اس سے تو الٹا ان کو ثواب کے بجائے ان کے
بہرحال مہمانداری اور افطاری ایک مستحب عمل ہے، لیکن کسی پر زیادتی ہم اس کے عوض میں نہیں کر سکتے،
نہیں کر سکتے
جی، جو کہ ایک گناہ کا باعث ہے جی۔
جی
دوسرا سوال ہمارے احمد علی صاحب ہیں، جو پاکستان ملتان سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا کہ تمہاری بیوی تمہاری نوکرانی نہیں ہے، اس سے پیار و محبت سے رہو، زیادہ توقع نہ رکھو، اس کا دل جیتو، محبت سے اسے جیتو، لیکن میں ہمیشہ اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ بیوی سر پر ناچے، اس لیے شروع ہی سے اس کے میکے جانے نہیں دیتا تھا، کسی کو دعوت پر بلانے نہیں دیتا تھا، اگر وہ کہے دن ہے تو میں کہتا تھا رات۔ मैंने सुना हुआ था कि औरत की बात को न कबूल करो और न ही उनसे मशवरा करो। कभी शिकवा शिकायत करती है तो उसे उसकी परवाह न करो। अलबत्ता मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन कभी उस पर आशकार नहीं करता था। हमेशा कम बात करना, देर से आना, जल्दी ही घर से चले जाना, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करता था। और आखिरकार अब अफसोस के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं हूँ मेरी तन्हाई और अफसोस का पहाड़। मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे पिछले ज़माने के तरीके से फिर चले आए मेरे पास और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अब मसला इतना उलझ गया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपसे इल्तिमास है कि मसले का हल बयान फरमाएं।
जी, जो कुछ इन्होंने किया है वो एक ऐसा अमल है कि जिसका नतीजा यही निकलता है और इससे बदतर हो जाता है।
जी
किसी भी इंसान के साथ अगर आपको ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उसके बरअक्स तो नहीं अमल करते।
जी
और जैसे कि इन्होंने फरमाया कि मैंने सुना है, बोल तो सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं किया जाता।
जी
और अकली तौर से भी ये अमल असलन इंसान को ख़ुद से मुतनफ़िर करने वाली बात है।
जी
यानी ये अपने दानिश में शायद एक अच्छा काम करने जा रहे हो कि मैं इस तरह करूँगा तो खातून को कंट्रोल में रखूँगा।
जी
दीन ने इस तरह से कंट्रोल नहीं किया इंसान को। दीन ने इंसान को इख्तियार दिया, उसको अच्छा बताया, बुरा बताया। तो ये अमल जो बाज़ माशरों में या बाज़ अफराद जो इस किस्म की फ़िक्र रखते हैं कि औरत को अपने कंट्रोल में रखो, ये गलत फ़िक्र है,
यानी उस माहौल का असर है जहाँ पे
माहौल
ये
का असर
ज़िंदगी
है।
गुजार
जी
रहे
हाँ
हैं।
जी,
जी
वहाँ इसी तरह से आइडियलाइज़ किया जाता होगा।
जी
एक मर्द को मर्द का तसव्वुर इस तरह से दिया जाता होगा कि वो अपनी बीवी को कुचल के और दबा कर और क़ैद करके रखा जाए तो ये मर्द कामयाब मर्द है
जी
और ये जीत गया है, वो हार गई है, इस तरह का कोई तसव्वुर होगा।
इन्होंने इस दौरे ज़िंदगी को एक मैदानी जंग से तब्दील कर दिया है।
जबकि दीन इस्लाम का तो तसव्वुर ही नहीं है। दीन इस्लाम तो मोहब्बत की बात करता है, उल्फत
जी
की, चाहत की, कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की बात करता है। ऐसी सूरत हाल में जब आप, इसका मतलब है आपको सिर्फ नाजुक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, आपको बीवी के हकूक़ नहीं मालूम, बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने के अखलाकियात नहीं मालूम।
उसके एहसास नहीं मालूम।
यही अमल अगर उनके साथ कोई करे तो उनको कैसा लगेगा? कोई भी घर का फर्द उनके साथ अगर इस तरह से करे तो उनको कितना बुरा लगेगा? तो हर इंसान को बुरा लगेगा। तो ये अभी नहीं, यानी ये तो लॉन्ग प्रोसेस वाली बात लग रही है। एक अरसे से ये करते आ रहे होंगे और वो थक हार कर उस नतीजे पर पहुंची होंगी कि आप उन्हें सोचोगे इससे बेहतर है मैं ज़िंदगी अपनी जो जुदा कर लूँ इनसे। और देखिए, एक खातून बच्चा होने के बाद अमूमन नहीं छोड़ती, लेकिन अगर कोई खातून बच्चा होने के बाद भी शौहर को छोड़ दें तो ये वाकई कितने वो सख्ती से गुजरी होंगी, कितनी अजियतें उन्होंने झेली होंगी, कितनी मुसीबतों से वो गुजरी होंगी जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो शौहर को छोड़ कर चली गई हैं।
जी यानी अब राह हल उनके पास थी ही नहीं, मजबूरन उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया।
एक बात तो ये हो सकती है, दूसरी
जी
बात ये हो सकती है वो शौहर को एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि आपको मेरी वजूद का की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रही हूँ सब कुछ,
जी
इसका आपको एहसास ही नहीं। अब इंसान जब छोड़ के जाता है उसका एक मकसद ये होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा एहसास हो, और गालिबन वो इस मकसद में तो ज़रूर कामयाब हो गई कि इनको ये एहसास अब हो गया।
जी और बाकायदा एहसास का अपने इजहार कर रहे हैं। जी
अच्छा, ये भी इजहार कर चुके हैं कि इनको मोहब्बत थी लेकिन कभी इजहार नहीं किया। ये
जी
तो इससे बड़ी मुसीबत है कि एक खातून के लिए, यानी बीवी के लिए सबसे कामयाबी का अमल ये है कि उसके शौहर मोहब्बत का इजहार करे और वो मोहब्बत का इजहार ही नहीं कर रहे। इस मरहले में इनको क्या करना चाहिए? तो देखें, इंसान बहरहाल खुदा की एक बेहतरीन मखलूक है और उसके अंदर एक खुदा ने एक दिल रखा है
जी
जो धड़कता रहता है, जिसके अंदर दर्द भी है। तो यहाँ पे मेरी इनसे ख्वाहिश ये होगी कि ये एक किसी तरह से भी उनसे कांटेक्ट करें। पहले मरहले में वो ये ज़रूर करें कि एक लेटर लिखें, इस मोहब्बत भरा एक ख़त लिखें उन्हें जिसमें वो अपनी पशेमानी का, अपनी गलतियों का इजहार करें कि मुझसे गलती हुई और मैं इसके लिए बहुत माजर खाऊँ, और इस बात को उसमें लिखें कि मुझे एहसास है कि मैंने आपको कितनी तकलीफ़ दी,
जी
और उनसे उजरखाई करें, और साथ में अच्छे अल्फाज के साथ और अगर हो सके तो गिफ्ट के साथ, किसी
जी
भी अच्छे फूलों के साथ उस लेटर को उनकी खिदमत में भेजें,
जी यानी वाकई अपनी निदामत का इजहार कामिल
इजहार
तौर
करें,
पर
कामिल
करें।
तौर पे करें, जो 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 इनके बसात में, इनके इस्तेताद में, वो ज़रूर करें।
जी
अच्छा, पहले लेटर में ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स आ जाए,
जी
शिद्दत है ना, क्योंकि खातून तो वैसे नरम दिल होती हैं,
जी
तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, उसके बाद हो सकता है कि इनको ज़रूरत पड़े कि किसी को मीडियम बनाएं, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ अकारिब, कोई समझदार इंसान, वो भी ज़रूरत पड़े तो उससे उसको भी बीच में लेकर आएँ कि ये सुलह सफाई कराई जाए, और लोगों को पसंद होता है, लोग चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए, वापस ज़िंदगी अच्छी सी हो जाए, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। तवस्सुल अपनी जगह, खुदा पर तवक्कुल अपनी जगह, लेकिन हमें अपना काम ज़रूर करना है। और जब भी उनको यकीन दिला देंगे तो ये वापस पलट आएंगी, क्योंकि हर खातून ये चाहती हैं कि वो अपने घर में खुश खुर्रम रहें, वो घर से अलग रहकर खुश नहीं रहना चाहती, ना रह पाती हैं वो, और उनकी उनको ये एहसास होना कि वो कामिल फैमिली है, मुकम्मल फैमिली है, वो साथ रहकर ही हो सकता है ना, अलग रहकर तो कोई अपने आप को कामयाब नहीं समझता, ना माशरा उसे समझता है
जी,
ना खुद इंसान अपने आप को महसूस करता है, जैसे ये खुद आप अकेले रह के महसूस नहीं कर पा रहे कि ये खुशगवार ज़िंदगी गुजार
रहे हैं। कई एतबार से बहरहाल ज़िंदगी जो इंसान अगर अकेलापन ही अच्छा हो तो इंसान उस मंजिल में शादी क्यों करता।
इसलिए ये इंशाल्लाह कोशिश करें, खुदा इंशाल्लाह उसमें खैर,
छूट जाने के बाद तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी इंसान की, बहरहाल बच्चा है, शौहर है, सारी चीज़ें, बहरहाल इंशाल्लाह परवरदिगार से हमारी तो यही दुआ है उनकी ज़िंदगी फिर से संवर जाए
इंशाल्लाह।
ये अगला सवाल है मरियम का, ये मुंबई से एक सवाल भेजती है और कहती है कि मैं 12वीं क्लास की तालिबा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, चूँकि एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूँ या ना करूँ, लड़का बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें उसके अंदर है, एक शरीफ ख़ानदान का है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत मेरे यहाँ ये है कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अगरचे मेरी पढ़ाई जो है वो अभी इतमाम तक नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ये जोर दे रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ चूँकि रिश्ता अच्छा है। मैं आपसे इसका हल चाहती हूँ, चूँकि बहरहाल मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, जो मेरा जहन ये कहता है कि बहरहाल, और ये हकीकत भी है कि शादी करना मुस्तहब है और इल्म हासिल करना वाजिब है, मैं वाजिब के लिए मुस्तहब को छोड़ दूँ या मुस्तहब को अख्तियार करूँ और वाजिब को छोड़ दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे राह हल बताएँ।
जी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये सवाल किया और अपने आप को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने की बात की, बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि वो इंटर में गालिबा 12वीं क्लास इंटर हमारे यहाँ कहलाती है ये, और इस वक्त उम्र जो है वो 17-18 साल की उम्र के दरमियान इंटर कर रहा होता है इंसान। तो इस हवाले से अगर कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है, इसको हम दो पहलू से देखेंगे, एक माँ बाप की निगाह से, एक बेटी की निगाह से। अगर हम माँ बाप की निगाह से देखेंगे, माँ बाप का मकाम, माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का कहना मानना, जन्नत की ज़मानत, तमाम चीज़ें, इनकी अज़मत जो कुछ हम सबको मालूम है एक मुसलमान होने की हैसियत से, माँ बाप को नाराज़ करना भी एक इंसान के लिए, अगर किसी के माँ बाप अगर उस औलाद से नाराज़ हो तो वो औलाद जन्नत में नहीं जा सकती। यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि माँ बाप की निगाह से अगर हम देखेंगे तो हर माँ बाप आज के इस दौर में ख़ास तौर से कि जहाँ पर अच्छे रिश्ते नहीं आते और मुनासिब लड़के नहीं हैं, तो अगर माँ बाप ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कर दिया जाए तो ये रिश्ता कर देना चाहिए, क्योंकि जिसे कहते हैं कि खुशबख्ती हर वक्त घर पर आकर दस्तक नहीं देती,
खुशकिस्मत माँ बाप के तसव्वुर के अतबार से शादी हो जानी चाहिए।
अच्छा, इनको खौफ ये है कि ये पढ़ नहीं पाएंगी
जी।
इनका मुकाबला पढ़ाई के साथ हो रहा है, तो इसमें इसको मुकाबले में ना लेकर आए, यानी एक दूसरे के आमने सामने ना लेकर आए शादी या पढ़ाई, ऐसे नहीं है, इसको एक कर लें, यानी आप निकाह कर लें और निकाह करके रहें, इसमें कोई हर्ज थोड़ी है कि आप रुखसती भी कर लें, नहीं आप निकाह कर लें और आप कह दें 2 साल बाद जब जो भी इनको करना है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करना है, तो आप कह दें भाई 2 साल बाद 3 साल बाद शादी होगी, लेकिन निकाह हम कर लेते हैं
जी।
और इनको मिलने की भी इजाज़त हो, बात कर सकते हो, बैठ सकते हो घद्याकल ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर सकते हो, इनको इजाज़त हो, तो इस तरह रिश्ता भी महफूज हो जाएगा और इनको भी एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि एज ऐसी हो चुकी है
जी
कि इनको एक ज़रूरत है कंपेनियन की, एक साथी की, शरीक हयात की इनको ज़रूरत है, तो वो भी इनको मिल जाएगा, लड़का भी अच्छा है
जी,
खातून भी अच्छी हैं, और ये निकाह करके रहें तो ज़्यादा बेहतर है। या दूसरी सूरत ये बन सकती है कि रुखसती हो जाए और ये
सावकात लड़के वाले निकाह पर तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद मुतालबे रुखसती भी करने लगते हैं,
वो कोई हर्ज भी नहीं है
जी,
कर लेना चाहिए। अगर रुखसती हो भी जाती है
जी,
तब भी ये कंडीशन हो कि हम पहले पढ़ेंगी, अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगी और ये लोग मुआविन और मददगार साबित होंगे, तो अगर लड़के वाले अच्छे हैं तो वो तावुन करेंगे ना, वो तो कहेंगे ठीक है, तावुन अल बिर्र व तक्वा।
और आजकल के ज़माने में है भी कि हर इंसान एक पढ़ी लिखी खातून चाहता है,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होगा कि ये भी पढ़ रही होंगी, वो भी अपने जॉब जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, घर के अंदर बड़ा अच्छा माहौल होगा, उनको भी सुकून होगा कि भाई मेरा एक शौहर है, मेरा एक लाइफ पार्टनर है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी है, हर तरह की सेटिस्फैक्शन है, तो ये स्टेप ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी खुश होंगे, अगर माँ बाप खुश होंगे तो खुदा खुश होगा
जी,
तो माँ बाप को भी खुश रखें।
बहरहाल माँ बाप ने जो आजकल अभी आपने इशारा किया इस बात की तरफ कि आजकल जमाना ऐसा है कि हर माँ बाप तकरीबन डरे हुए हैं।
जी हाँ, देखिए माशरे में
दीनदार माहौल।
इनसिक्योरिटी फैल रही है,
जी
इसी वजह से लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ना चाह रही हैं,
जी
क्योंकि डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है और फैमिली में तबाही बर्बादी ज़्यादा आ रही है।
जी
इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि लड़की अपने आप को सिक्योर करना चाहती है कि खुदा ना खास्ता कल को अगर मेरे रवाबित ख़राब हो गए, मेरा रिश्ता ख़राब हो गया और मुझे डिवोर्स लेनी पड़ी तो फिर मैं क्या करूँगी।
मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं।
हाँ, ये उस खौफ के नतीजे में होता है।
जी
वरना अगर माशरे में पीसफुल माहौल हो और कामयाब इज़दवाज शादियाँ हो रही हो, ज़िंदगी गुजर रही हो, तो कोई लड़की नहीं चाहेगी कि वो वेट करे।
जी
वो उम्र के सिलसिले में आके तो उसका बेहतरीन टाइम है शादी का, वो शादी करना चाहेगी, लेकिन क्योंकि वो अपने को सिक्योर करना चाहती है इसलिए वो पढ़ना चाहती है।
जी
एक दूसरा ये कि माशरे जो आपसे डिमांड कर रहा है वो ये कि आप कितनी पढ़ी हुई हैं,
जी
क्योंकि चेंज आ रहा है ना, माशरे में चेंज आ रहा है। तो आप भी देखते हैं कि लड़की कितनी प्रोफेशनल है, लड़का कितना प्रोफेशनल है। बुरा बुरी बात नहीं है, आप पढ़ें, आप अच्छा जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन दीन के तकाज़ों को पूरा करते हुए आप पढ़ें
जी
तो वो बहुत अच्छा है।
ये अगला सवाल है, वही सवाल। बहरहाल इस सवाल को देखते हुए, बहरहाल जो मुश्किलात है आजकल माशरे की, वो इसमें बहुत हद तक पोशीदा है। वो ये कहते हैं कि हसन अब्बास साहब हमें कराची से, वो कहते हैं कि मेरी बीवी सच्ची संवरती नहीं थी और मैं उनसे मुसलसल कहता था कि तुम सजो संवरो, मैं घर आऊँ तो तुम, मुझे ऐसा लगे कि जैसे तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो सारी चीज़ें। लेकिन वो कभी इस चीज़ पर तवज्जो देती नहीं थी, यहाँ तक कि जब मैंने कभी उनको डांट भी दिया तो बजाय इसके कि वो अपने आप को संवार ले जाएं, मुझसे नाराज़ हो जाती थी। इसी असना में मेरी मुलाकात एक ऐसी खातून से होती है, जैसा मैं अपने जहन में खातून को रखता था उसी के मुताबिक वो मतलब जहन के बाहर मुझे मिली। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं अपने हिसाब से तो चाहता हूँ कि उस जो मुझे मुलाकात हुई मेरी खातून से, मैं उनके साथ शादी कर लूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है वो बहरहाल मेरे घर वाले उससे नाराज़ हो जाएंगे अगर उससे मेरा रابطہ ख़राब हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ या घर वालों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, जबकि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपसे एक यहाँ पर गुजारिश ये है कि आप मुझे रहनुमाई करें कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ।
देखें, आप दीन के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें,
जी
ना हमारी ना आपकी, दीन के प्रिंसिपल्स पर चलें, क्योंकि दीन ही आपको निजात बताएगा, राह निजात क्या है। पहली बात तो ये हो गई कि अब घर वाले क्या कह रहे हैं और मेरा दिल क्या कह रहा है और माशरा क्या कह रहा है। आप देखें दीन क्या कहता है, दीन ने क्या मशवरा दिया है,
जी
आइमा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के बारे में क्या फ़रमाया है, इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़रमाया है,
जी
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, कैसी है, इसको आप देखें और उससे आप सबक लें और अपनी ज़िंदगी
जी
गुजारें।
उन्हीं की सीरत हमारे लिए नमूने
ठीक
अमल
है,
है। जी
इसके बाद ये जो फरमा रहे हैं कि मेरी जो बीवी हैं वो तैयार नहीं होती हैं और अपने आप को तैयार नहीं रखती और इनकी ख्वाहिश है, ये हर मर्द की ख्वाहिश होती है
जी
कि उसकी बीवी किसी भी ज़िंदगी के पहलू में हो, यानी किसी भी टाइम, चाहे 2 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए, 10 साल हो, वो अपने आप को मेंटेन रखे, अपने आप को फिट रखे, अपडेट रखे,
जी
और मुस्तहब अमल है दीन की निगाह में, ये मुस्तहब अमल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई, उन्होंने आके पूछा कि शौहर का मुझ पर क्या हक़ है, तो आपने एक हक़ ये बताया कि तुम अपने आप को शौहर के लिए हमेशा आमादा रखो, तैयार रखो,
सजी संवरी
सजी
रहो।
संवरी रहो, खुशबू लगाओ, अपने मियाँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ये तुम्हारा मियाँ का हक़ है तुम पर। तो अगर वो ये कोताही कर रही हैं तो ये उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको ये अमल रखना चाहिए। इसके बावजूद भी कि अगर किसी मियाँ बीवी में मोहब्बत पाई जाती है और वो बीवी अपने आप को तैयार नहीं रखती अपने मियाँ के लिए और ये सोच के कि मोहब्बत तो है ना हमें, ये बात सही नहीं है,
जी
मोहब्बत कम रंग होनी शुरू हो जाती है,
जी
फीकी पड़नी शुरू हो जाती है अगर ख्वातीन अपने आप को तैयार ना रखें, ख़ास तौर से अपने मियाँ के लिए।
जी
इसलिए यहाँ पे इनकी कोताही है कि ये अपने आप को तैयार रखें। हो सकता है इनके कल्चर में ऐसा हो, ये खातून जिस माशरे से उठकर आई है ना, उस माशरे में इसकी अहमियत ना हो,
जी
उन्होंने अपने घर में ऐसा कभी ना देखा हो,
जी
या उनकी वालदा ने अपनी बेटी को ट्रेन नहीं किया हो
जी
कि तुम्हें अपने शौहर के साथ किस तरह जीना है,
जी शादी के बारे में तो बताया लेकिन शादी के बाद कैसे जीना
कैसे
है।
जीना है उसके
जी
बारे में नहीं बताया। तो बाज़ दफ़ा ये, क्योंकि घर का माहौल, रिश्तेदारों का माहौल ऐसा नहीं होता, तो ये
जी
लड़कियाँ भी इन चीज़ों को अहमियत नहीं देती,
जी
इनको अहम नहीं समझती। एक बात तो ये हो गई
जी
कि इनकी कोताही है कि ये इसको पूरा करें।
जी
अच्छा, इन भाई साहब का क्या मसला हो रहा है? इनका मसला ये हो रहा है कि ये पलट रहे हैं दूसरी तरफ,
जी
कह रहे हैं कि मेरा अभी रابطہ हुआ है और वो जो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया बनाई थी उसमें जो
वो
तसव्वुर था वो मिल गया। अव्वल तो
शहजादी
ये कि ये अमल जायज़ नहीं है, آپ کیسے کسی نامحرم کے ساتھ وہ روابط قائم کر رہے ہیں, رابطہ قائم کر رہے ہیں اور ان سے محبت اور عشق کے میدان میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ شرعی عمل صحیح نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو تصور انہوں نے کیا یہ اسی کے مطابق ہے, تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ وہ انہوں نے اس کو تمام اسپیکٹس زندگی کے دیکھ لیا؟ ابھی تو شادی شدہ نہیں ہوئی ہے نا ان کے ساتھ, نہ ہی زندگی گزارنا شروع ہوئی ہیں. آج ان کو اپنی بیوی اس لحاظ سے پسند نہیں آ رہی ہے, کل کو دوسری شادی کریں گے دوسری بیوی کسی اور لحاظ سے پسند نہیں آئے گی.
اور اکثر دور کے ڈول سہانے بھی ہوتے ہیں.
پھر آگے بڑھیں گے, پھر کہیں گے تیسری مجھے مل گئی جو کامل ہے. تو یہ کوئی فیصلہ, یہ کوئی نتیجہ نہیں ہے, اس لیے کوئی ویلڈ ریزن ہی نہیں ہے. ان باتوں پہ تھوڑی رشتے ختم کیے جاتے ہیں اور دوسری شادیاں کی جاتی ہیں,
اور جبکہ ان کو کوئی دوسری شکایت بھی نہیں,
شکایت بھی نہیں. تو اس ایک بات جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہ اصلی بات نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے اور بھی کچھ عوامل ہوں گے, کوئی اور باتیں ہوں گی جس کی بنا پر اس کو ایشو بنا کر وہ دوسری خاتون کی طرف پلٹ رہے ہیں. یہ اصل بات یہ ہوتی ہے. لیکن ہم فرض
عیب سمجھ میں نہیں آتے, ہمارے اندر عیب کیا ہیں اور ایک بظاہری چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہی مشکل ہماری ہے.
لیکن یہ مشکل نہیں ہوگی, مشکل حتما اور بھی چیزیں ہوں گی. فرض کریں ہم اسی کو مشکل مان لیتے ہیں, تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ایک خاتون کے لیے تیار ہونا, اس کی اہمیت کو سمجھنا, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. بلکہ وہ شوق سے تیار ہوں گی. آپ ذرا میک اپ کا سامان تو لا کے دیں ان کو, آپ ان کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سولہ سنگھار, اتنی چیزیں جو ان کی ہیں آج کل کاسمیٹکس وغیرہ یہ وہ, اگر ان کو اس چیز کی اویئرنیس دے دی جائے اور ان کو اگر اس میں اہمیت دلائی جائے کہ دین بھی تاکید کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو فٹ کرو, تو کیوں نہیں کریں گی, اپنے شوہر کے لیے خوشی خوشی کریں گی. تو اسی حوالے سے یہاں پہ میں ان سے عرض یہ میرے اپنے بھائی سے حسن صاحب سے کہ اصلاً یہ عمل صحیح نہیں ہے. آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو برباد کریں اور ایک خاتون کے جو آلریڈی آپ کی زندگی میں اس کو سنواریں سدھاریں, اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. دوسری خواتین سے آپ کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے تصور کے مطابق ہے, تو ابھی یہ پریکٹیکل نہیں ہوئے ہیں آپ اور مختلف زاویوں سے آپ نے نہیں دیکھا ہے, یہ صرف ایک زاویے سے آپ دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ مکمل بات نہیں ہے. خدا نے اور کوئی اگر مسئلہ نہیں ہے نا, تو یہ محبت ڈیولپ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ان پروگرامز کو آپ فالو کریں گے تو وہ عوامل ہم نے ذکر کیے ہیں کہ جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی محبت ڈیولپ ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ دعا اللہ سے یہی ہے کہ بہرحال اس مشکل کو اپنے حل کر لیں, اور نہ کہ یہ جو ہے ایک دوسری مشکل ایجاد کرنے کی خاطر پہلی مشکل کو اپنے سنوار لیں, سدھار لے جائیں, تاکہ یہی زندگی ان کی خوشگوار ہو جائے. لہٰذا آج کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اپنے ناظرین محترم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہرحال یہ ہمارے جو آپ نے سوالات بھیجے, کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم اپنے مولانا سے ان کے جوابات حاصل کر سکیں, اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کے لیے وہ فائدہ بخش بھی ہوں گے. لہٰذا آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کو ان کے جوابات دیتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شفیق العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.